जी ओम शांति भाई जी।
ओम शांति।
भाई जी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने यहाँ लिख लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा है जो एक बहन ने पूछा है, शरीर के किसी बीमारी से छुटकारा कैसे पाएं? कई तरह की दवाइयाँ हैं जो उन्होंने सभी तरह की होम्योपैथी एलोपैथी सब ट्राई कर लिया मगर बीमारी ठीक नहीं हो पा रही, तो कैसे छुटकारा पाएं? क्या योग से हम छुटकारा पा सकते हैं?
शरीर का जो भी पेपर है, मेजोरिटी सबको है। कोई को एक बीमारी है, कोई को दो तीन। हमने तो कोई देखा है कि कोई कोई दिन में 10-10 गोलियां लेते हैं, उनका चलता रहता है। बट इसमें कभी कभी कोई कोई जल्दी ठीक हो जाता है, कोई कोई सालों साल ट्रीटमेंट ले रहा है, वो जल्दी ठीक नहीं होता। कई हमें इतने ईमेल्स आते हैं, मैसेज आते हैं कि हम इतनी दवाइयां लेते हैं, हम इतने मेडिसिन अलग अलग आयुर्वेदिक होम्योपैथी अलग अलग ट्राई किया, लेकिन ठीक नहीं हो रही। इसका क्या होता है? देखो, मुरलियों में बाबा हमेशा बोलते हैं, ये जो कर्म भोग है, ये पास्ट के पिछले जन्मों के जो रॉन्ग कर्म हुए हैं, पाप कर्म विकर्म है, उसका उनका इफेक्ट है। तो हम जैसे बाबा मुरलियों में वो एक वाक्य आता है, देखो, जो बच्चे मेरी याद में रहते हैं, जो बच्चे मेरी याद में रहते हैं, शरीर के रोग जो उन्हें तंग करते हैं, वह स्वतः ठंडे हो जाएंगे।
हाँ
तो फर्स्ट चैप्टर इस बीमारी का है याद। जितना हम योग का चार्ट बढ़ाएंगे, जितना हम मेडिटेशन करेंगे, स्वतः ही हम लाइट फील करेंगे। एंड इस लाइट फील करने से स्वतः ही हमारी जो शरीर की व्याधि या बीमारी है, वह सूली से कांटा बन जाएगी। इसमें हम तीन बातें ले सकते हैं, तीन से चार बातें ऐड करेंगे। फर्स्ट इज मेडिटेशन से अपने शरीर को सकाश देना। इसकी कई कॉमेंट्रीज भी हैं जो हम तीन बार ऐड करेंगे, सुबह नुमा शाम योग और रात सोने से पहले 10-10 मिनट सिर्फ करना है, शरीर को सकाश देना। एंड सेकेंड इज क्या होता है, कई आत्माओं को पिछले जन्मों में हमें हर्ट किया हुआ है, उनकी जो नेगेटिव इफेक्ट है वो हमें आते रहते हैं, वो हमें दुख देती है, वो हमें डाउन करती है, वो हमें बीमारी से बीमारी में क्या बोलते उलझा के रख देती है। तो उन इफेक्ट को कम करने के लिए हम दिन में 10-15 मिनट फॉरगिवनेस का मेडिटेशन करेंगे। जो हम आत्माएं पिछले जन्मों की या इसी जन्म में हमने दुख दिया हो, उन्हें हम जिन्होंने हमें दुख दिया हो, उन्हें हम टोटली माफ करेंगे, जो भी हो, फॉरगिवनेस का अभ्यास। एंड थर्ड हिस, पूरे ग्लोब को इमर्ज करके सारे विश्व को सकाश देंगे। इनडायरेक्टली सकाश जाने हम क्या करते हैं, पूरे विश्व को दुआएं देते हैं। जितना दुआएं देते हैं, रिटर्न में हमें दुआएं प्राप्त होती हैं। एंड इन दुआओं का बल, एक मुरली बाबा ने कहा, यह दुआएं दवाई का काम करती है ऐसे सिचुएशन में। तो शरीर को सकाश, फॉरगिवनेस का मेडिटेशन, सारे विश्व को सकाश, एंड फोर्थ, जो स्थूल हम भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, वह बाबा की याद में पीना है। जो पानी चार्ज करके पीना, आजकल जो क्लासेस चलती हैं, पानी चार्ज करके पीना। देखो, एक मुरली में बाबा ने कहा था, अगर याद में हम सूखी रोटी भी खाएंगे तो उसमें आपको सारे विटामिन्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स ए बी सी सब कुछ मिल जाएगा। तो याद में इतना बल है। तो जितना बाबा की याद में रहेंगे, जितना दुआएं देंगे, फॉरगिवनेस का अभ्यास करेंगे, याद में भोजन पानी चार्ज करके पिएंगे, स्वतः ही यह बीमारियां सूली से कांटा बनती जाएंगी। इट्स ओके। ये मेन चार चार बातें। और एक हम ऐड करेंगे, देखो, बाबा के कई मुरलियों में आता है, भोग लगाओ भोगनाएं मिटाओ। कई बार हमने देखा था, दादी जानकी जी को शरीर का बहुत पेपर आता था। एक बार तो इतना सिचुएशन था कि वो बेड पर थे तो उन्होंने भोग लगवाया। मुझे लगता है आधा घंटा वो भोग में थे, एंड विद इन 15 मिनट्स वो एकदम रेडी हो गए नेक्स्ट क्लास के लिए एकदम। तो ये भोग भी बहुत काम करता है। एंड हमारे कंडीशन में अगर अनुभव अनुभव पड़ा हो, तो हम फर्स्ट 3 ईयर्स जब ज्ञान में आए थे, तो हम फिजिकली इतना फिट नहीं थे, तो हम ना सेंटर जा पाते थे ना कुछ वाचा सेवा करते थे। तो हमने क्या किया, हमने ये सुना था क्लास कि भोग लगाओ भोगना मिटाओ, तो हमने भोग लगाना चालू किया अमृत वेला। एंड आज ऑलमोस्ट 6 ईयर्स है हम अमृत वेला भोग लगाते हैं एंड उसका हमें बहुत बेनिफिट मिला है। तो ये बातें ऐड करने से हमें विद इन 21 डेज 3 मंथ्स में बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। ओके
थैंक यू भाई जी, थैंक यू।
नेक्स्ट प्रश्न,
नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं दो क्वेश्चंस को मिक्स कर रही हूँ भाई जी, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। सो एक तो क्वेश्चन अभी अभी हमें ऑनलाइन ही आया कि हम अपने नेगेटिव थॉट्स दूसरों के लिए कैसे हटाएं और श्रेष्ठ योगी कैसे बने।
ओके, पहले हम लेते हैं श्रेष्ठ योगी कैसे बने। हमारे ज्ञान का मेन चैप्टर, सबको योगी बनना होता है, लेकिन चलते चलते बहुत सारे डाइवर्जेंस आकर्षण आते रहते हैं। जब हम नए थे अराउंड 10 ईयर्स पहले, हमें बाबा का एक वाक्य मिला था जो भगवद गीता में है, यानी एक क्लास में हमने सुना था कि भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योगी तो आत्मा ही मुझे सबसे प्रिय है। वह अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, योगी तो आत्मा ही मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, इसलिए हे अर्जुन तू योगी बन। तो हमने सोचा यस, हम ये करेंगे, अगर भगवान को प्यारे हैं योगी तो हम योगी जरूर बनेंगे। इसी जर्नी में हमने एक वाक्य मुरली से ऐसा सुना था, तो हमें बहुत क्लिक हुआ कि अगर योगी बनेंगे, श्रेष्ठ योगी का वरदान पाते हैं, तो कितने बेनिफिट्स हैं। श्रेष्ठ योगी बनने के लिए पहले हमें उसके महत्व को जानना है कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या हमारे लाइफ में महत्व है, हमें क्या मिलेगा, प्राप्ति क्या है। तो ऐसा वाक्य मुझे मिला था, बाबा ने मुरली में कहा था, इस ब्राह्मण जीवन में सर्वश्रेष्ठ वरदान योगी तु भव का वरदान है, जिससे ये वरदान प्राप्त होता है उसे बाकी सभी वरदान स्वतः मिलते हैं। तो हमें अचानक एक क्लिक हुआ कि ये श्रेष्ठ योगी भव का वरदान प्राप्त करने से बाकी सभी वरदान स्वतः मिलते रहते हैं। तो हमने क्या कहा, इतने सारे पुरुषार्थ करने से अच्छा क्यों ना हम श्रेष्ठ योगी बने। तो हमने फर्स्ट 3 इयर्स में ऑलमोस्ट मुश्किल से घर से निकल पाता, सेंटर नहीं जाता था मैं, मुश्किल से चल पाता था। 2015-16 में मेरे 2 ऑपरेशन हुए थे हिप जॉइंट्स के, उसके पहले की ये जर्नी थी 3-4 इयर्स, मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने बस फोकस किया, चलो हम ना कुछ सेवा कर पाते हैं, ना बाहर निकल कुछ वाचा सेवा कर पाते हैं, ना कर्मणा सेवा कर पाते, ना धन से सेवा कर पाते हैं, बाबा तू मुझसे ये सेवा करो, तू श्रेष्ठ योगी बना, मुझसे मनसा सेवा करो। तो मैंने ये इस पे ही फोकस किया 3 इयर्स कि बाबा से हम ये वरदान ले। एंड बहुत बार मुरलियों में भी आता है, आप वरदानी मूरत बनो, जितना वरदानी मूरत बनेंगे स्वतः ही सब प्रॉब्लम ठीक होते जाएंगे। एंड मैंने देखा कि अगर ये श्रेष्ठ योगी वरदान का मिलता है श्रेष्ठ, तो बाकी सभी वरदान स्वतः मिलते हैं। तो जैसे इन वरदानों का प्रैक्टिस हम चाहते थे कि भाई जब हम भी वरदानी मूरत बने, अराउंड 2014 में हमने दादी जानकी का एक क्लास सुना। दादी जानकी जी एक 70s के दौरान फॉरेन की सेवाओं से इंडिया में आते थे। तो जब यहाँ आते थे अविक बाप दादा तब एक एक से अलग अलग मिलते थे। तो दादी जानकी US से पार्टी लाए थे, तो एक एक करके सब मिल रहे थे, तो लास्ट में दादी जानकी का टर्न आया। तो बाबा तब सबको एक एक वरदान देते थे इंडिविजुअली, तो लास्ट में दादी जानकी का टर्न आया। दादी जानकी बोले, बाबा अभी मुझे वरदान दो। बाबा मुस्कराने लगे, बाबा बोले, बच्ची तुम्हारा जन्म वरदानों से हुआ, तुम्हारी पालना वरदानों से हुई, और तुम अभी वरदानों की मूरत बन गई हो, तो तुम्हें वरदान क्यों, तुम्हें अभी क्या वरदान दूं। तो मुझे ऐसे क्लिक हुआ कि बस कुछ भी हो हमें वरदानी मूरत बनना है, वरदानों से जन्म, वरदानों से पालना, वरदानों की मूरत, कुछ भी हो फोकस पूरा वरदानों पे करेंगे। और मुझे पता लगा ये श्रेष्ठ योगी वरदान है, इसे सभी वरदान मिलेंगे, तो हमने इस पे फोकस किया। तो चलो ये चैप्टर श्रेष्ठ योगी भव एंड श्रेष्ठ योगी भव बनने के लिए कैसे बने प्रश्न है ना। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल 4 to 8 hours योग का चार्ट स्टार्ट करना है, 4 hours। देखो पहले दिन 8 घंटा चार्ट नहीं होगा, स्टार्ट करना है 4 hours चार्ट योग का। इट्स इजी, देखो हम 1 आवर अमृत वाला मेडिटेशन करते हैं, 1 आवर, 2 आवर, 1 आवर हम मुरली सुनते हैं वो योगिक थोके सुने, 1 आवर नुमा शाम योग करते हैं, उससे अलग एक बैठ के आधा एक घंटा योग कर सकते हैं, ऑटोमेटिक 4 आवर हो जाता है। एंड धीरे धीरे इस बैठा योग के बाद कर्म योग में ऐड करना है। देखो योगी बनना है ना तो सिर्फ बैठ के योगी नहीं बनना है, कर्म में हमें चलते फिरते, बात करते, ऑफिस का या घर में भोजन बनाते, इसमें हमें योग को ऐड करना है। देखो बाबा ने मुरली में कहा है, मेरे सबसे बहादुर बच्चे वो है जो कर्म में योग करते हैं। तो हमें कर्म योगी बने बिना हम योगी नहीं बन सकते, सिर्फ बैठा योग इज नॉट सफिशियंट, कर्म में ऐड करना है। तो 4 आवर to 8 आवर्स चार्ट बनाना है। एंड इसका बेस क्या है, 8 घंटा धीरे धीरे पहुंचाने के लिए फर्स्ट इज अशरीरी बनने की प्रैक्टिस, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, फोकस रहना है हमें, बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहना है अशरीरी। ए सेकेंड इज अटेंशन, हमें अपने थॉट्स पे अटेंशन रखना है कि हमारे थॉट्स नेगेटिव में तो नहीं जा रहे, परचिंतन में तो नहीं जा रहे, परदर्शन में तो नहीं जा रहे। जितना हम नेगेटिव में जाएंगे उतना ही हमें यह अशरीरी बनने की प्रैक्टिस मुश्किल होती जाएगी, हमारा योग सहज नहीं होगा। तो अटेंशन हमारे थॉट्स पे है, जैसे ब्रह्मा बाबा का भी लास्ट तक पुरुषार्थ उनसे पूछा गया, वो बोले अटेंशन है, थॉट्स पे अटेंशन था। तो फर्स्ट इज अशरीरी, सेकेंड अटेंशन, थर्ड इज आत्मिक दृष्टि, दिस इज वेरी मेन। जितना हम आत्मिक दृष्टि कर रखते हैं, दैहिक दृष्टि रखने से, एक वाक्य था मुरलियों में, देह को देखने में, देह में विकारी करंट है इसलिए देह को न देखो। जितना हम आत्मिक दृष्टि रखेंगे उतना आप फील करेंगे, ऑटोमेटिक योग लगेगा, ऑटोमेटिक हम इजी योग लगेगा। आत्मिक दृष्टि में नॉट जस्ट शरीर को आत्मा देखना है, बट हमें उस आत्मा को, वो जो कुछ भी कर रही है उसमें हमें निर्दोष देखना है उसे। अटेंशन, अशरीरीपन, आत्मिक दृष्टि, एंड फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य इमर्ज करने के लिए बाबा ने कहा था, इस पूरी संसार को, इस पुरानी दुनिया को शमशान देखो। जितना हम शमशान देखेंगे, बस सब मरे पड़े, कुछ नहीं, सब खत्म होने वाला है, उतना ही बेहद का वैराग्य इमर्ज होगा। बस हमें फील करना है कि बस अभी कुछ नहीं रहा, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। एक मुरली में था, बाबा ने कहा, अगर स्थिति उपराम बनानी है तो यह संकल्प करो कि मुझे इस पुरानी दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जितना कुछ नहीं चाहिए करेंगे, ऑटोमेटिक बेहद का वैराग्य होगा, ऑटोमेटिक अशरीरी इजी होगा, एंड ऑटोमेटिक 6 आवर्स 8 आवर्स योग का चार्ट हो जाएगा, श्रेष्ठ योगी इजीली बनेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बोला, नेगेटिव संकल्प किसके लिए कैसे चेंज करें, ये तो आज हर घर में है, हर हर एक के साथ होगा, ऑफिस में हो सकता है, घर में हो सकता है, कोई बुरा व्यवहार हमसे करता है, हम ना चाहते हुए भी उसके लिए बुरा फील करते हैं, अरे कैसा इंसान है, ऐसे कैसे कर रहा है ये। कभी कभार हमें ज्ञान में चलने के लिए सहयोग नहीं देते, हमारा कोई कार्य में कोई विरोध बनते हैं, कोई विघ्न डालते हैं, ऑटोमेटिक नेगेटिव सोचते हैं, अरे बाबा इसको ठीक कर, कैसा इंसान है। कभी कभी तो मैंने देखा है, इतना बुरा हो जाता है कि वो दुआएं देता है कि बाबा इसको अभी ले लो, उसको बुरा फील होता है। तो हमें एक मुरली का वाक्य याद, तो एक मुरली थी, बाबा के, बाबा ने एक माता को पूछा, बाबा मेरा पति मुझे बहुत मारता है। तो बाबा ने स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे दिया, तुमने भी कभी मारा होगा। तो इट्स लाइक अ कार्मिक अकाउंट, आज हमें कहीं से नेगेटिव मिल रहा है तो 100% कहीं ना कहीं पिछले जन्मों में या इसी जन्म में हमने नेगेटिव दिया है। तो चलो जो हुआ, इट्स पास्ट इज पास्ट, अभी जो नेगेटिव मिल रहा है उसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है पॉजिटिव में। उसके लिए बाबा ने मुरलियों में कहा है, वृत्ति से वृत्ति को परिवर्तन करो, आपकी शुभ भावना से कोई किसी को भी, किसी आत्मा को भी आप परिवर्तन कर सकते हो, कोई जिद्दी हो, कैसा भी हो, आप उस आत्मा को शुभ भावना से परिवर्तन कर सकते हो। हमने एक 6 months पहले ही अनुभव देखा था कि एक बहन का, उनका पति सहयोग नहीं दे रहे थे, प्यूरिटी का प्रॉब्लम, सहयोग नहीं दे रहे थे, सेंटर पे जाने नहीं दे रहे थे। तो अभी हम तो कुमार हैं, हमें कभी ऐसे अनुभव नहीं हुए, तो हमारे इंचार्ज है, सीनियर इंचार्ज है, उनसे पूछा, दीदी ऐसे बहुत ईमेल आ रहे हैं, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें पति सहयोग नहीं दे रहे हैं, घर वाले या सास या कोई सहयोग नहीं दे रहे हैं ज्ञान में चलने के लिए, हम क्या करें। तो हमारी दीदी ने बोला, ऐसे हम हजारों अनुभव उनके पास आए और सब मेजोरिटी ठीक होते, उन्होंने देखा कि उन्होंने संकल्प क्या बताया कि जब भी घर में हो आप संकल्प करो, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं इस घर की देवी हूँ, एंड जो भी आत्माएं इस घर में है वे हमारे गुड फ्रेंड है, वे हमारे भाई बहन है, इस फीलिंग से हम रहते हैं। तो विद इन 21 days, 3 months, 100% इफेक्ट मिलता है उनको। प्यार से भोजन बाबा की याद में स्वीकार करें, पानी चार्ज करके दे, पानी देते समय संकल्प करें ये बाबा का बच्चा है, ये पानी स्वीकार करते, ये भोजन स्वीकार करते ही यह आत्मा बाबा का बच्चा बन जाएगी, यह आत्मा पवित्र बन जाएगी, यह मुझे सहयोग देगी, ऐसे ऐसे संकल्पों से हजारों आत्माओं में यह परिवर्तन आया। तो यह शुभ भावना का अभ्यास दिन में 2 times हम कर सकते हैं। इमर्ज करना है सूक्ष्म वतन में, बाबा के साथ हम हैं, सामने वह आत्मा 1, 2, 3, 5, 10 जो भी हो, जो हमारे अगेंस्ट है, हमें विघ्न डालते हैं, हमें हमारे मन में उनके लिए नेगेटिव भाव है, बाबा से किरणें लेकर, प्यार की किरणें, स्नेह की किरणें लेकर हमें पहले भरपूर होना है, फिर सामने उन आत्माओं को इमर्ज करके उन आत्माओं को हम स्नेह की किरणें, शुभ भावना की किरणें 5 minutes, 10 minutes टोटली फोकस करेंगे, एकाग्र करेंगे, एंड 10 मिनट एकाग्र के बाद हम उनसे बातें करेंगे, हे आत्मा आप मेरे भाई हो, आप भगवान के बच्चे हो, आप पवित्र हो, इससे हमारी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, इसे साकार देते, आप मेरे गुड फ्रेंड हो, आप भगवान के बच्चे हो, एंड इसमें हमने भी देखा यूट्यूब चैनल्स में कमेंट्स है, ईमेल्स आते हैं, हंड्रेड्स ऑफ सोल्स, थाउजेंड्स ऑफ सोल को बेनिफिट हुआ, आत्माएं चेंज हुई, उनका व्यवहार ऑटोमेटिक चेंज होगा, आपको कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा, आप देखेंगे सामने वाला आपसे प्यार से बात करेगा, आपको ऑटोमेटिक खुलेगा, कुछ बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक मैजिक होगा इस अभ्यास से। एंड क्या होता है, घर में होता है या सहयोगी ऑफिस में होते हैं, वो ज्ञान में नहीं चलते, हम ज्ञान में हैं, तो हमें क्या लगता है हम ज्ञान में चल रहे हैं, हमारा मार्ग अलग है, ये आत्माएं पतित हैं, ये माइंड में आता है ये पतित हैं, ये लोग का खान पान अच्छा नहीं, ये लोग का घर में धारणा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये मन में हमारे रहता है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पहले 9 lakh आत्माएं आएंगी, पूरे सतयुग में 2 से 3 crore, एंड पूरे सतयुग त्रेता में 33 crore देवी देवता है, एंड अभी 800 crore आत्माएं हैं, एंड जैसे हम परमधाम का इमेज देखते हैं तो 800 crore आत्माओं की जो झाड़ है हम देखते हैं, सभी आत्माएं वहां प्योर हैं, सतो प्रदान है, जैसे बाबा कहते हैं सभी आत्माओं को जन्म लेके सतो रजो तमो में आना है, तो हमें नहीं भूलना चाहिए, समझो हम ऊपर है, हम 9 lakh में है, हमारी लाइट समझो 90 है, बाबा इज 100, हम समझो 90 है या 80 है समझो, बट जो द्वापर के बाद आत्माएं, जो बाबा के बच्चे नहीं है, जो समझो हमारे घर में हो या ऑफिस में हो, उसकी लाइट समझो 45 है, जो द्वापर के बाद, जो 50% के बाद है, बट हमें यह नहीं भूलना चाहिए वो अपने आप में पवित्र है, वो जब इस सृष्टि में आती है वो प्योर होती है, जैसे बाबा बोलते सतो रजो तमो, सतो प्रदान होती है, तो उस जर्नी में आते आते अभी वो तमो प्रदान बनी है, बट जो भी आत्माएं हैं इस झाड़ में अपने आप में वो पवित्र है, सभी धर्म अपने आप में पवित्र है, वो हमें एक्सेप्ट करना है उनको, एंड उसी अनुसार हम चलेंगे, शुभ भावना रखेंगे, तो ऑटोमेटिक सबका सहयोग मिलेगा, सबका स्नेह मिलेगा ऑटोमेटिक। एंड हजारों आत्माओं हमने देखी है, एंड अनुभवों से हम भाई बहनों के देखते हैं तो बहुत बेनिफिट होता है शुभ भावना का। ठीक है,
शुक्रिया भाई जी, थैंक यू, बहुत सुंदर, आपने काफी सारे जो क्वेश्चंस मेरे भी मन में थे एंड आई एम श्योर इस ग्रुप के पास भी होंगे, उनका आंसर किया। अंकिता बहन, आप अगला क्वेश्चन पूछोगे?
जी पूजा बहन,
मुझे एक तो कुछ बहनों ने और कुछ भाई जी ने पूछा था कि अमृत वेला पावरफुल और रेगुलर कैसे बनाए, पहला ये क्वेश्चन है। और एक और बहन जी ने पूछा है कि पहले तो योग लग जाता था बहुत अच्छे से, पर अभी कुछ समय से धीरे धीरे मेरा योग लगना बंद हो गया है, योग में मन नहीं टिक पाता, इसका क्या कारण है?
पहले प्रश्न पे आते हैं, अमृत वेला पावरफुल कैसे बनाएं। कई आत्माएं मैसेज करती हैं, फोन कर दिए हैं, उनसे पूछते हैं, वो सब प्रॉब्लम बताती है, हमारे घर में ऐसे विघ्न हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, बस बताते जाते हैं ये वो ये है। हम पूछते हैं उनको अमृत वेला रेगुलर है, वो बोलते हैं नहीं भाई जी, अमृत वेला नहीं उठ पाते, अमृत वेला नहीं हो पाता। मैं बोलता हूँ नुमाश्रम योग होता है? नहीं भाई जी, इस घर में ऐसे होता है, बच्चे हैं, घर का ऐसा कार्य होता है, बट हम बीच बीच में बाबा को याद करते हैं। जब हम ज्ञान में नए थे, तो अमृत वेला पावरफुल बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को इस अमृत वेले का महत्व का अवेयरनेस देना हो, पूरा सबकॉन्शियस माइंड। जैसे यज्ञ का किताब आता है अमृत वेला, वो पहले सब लोग खरीद लो, जिसे भी अमृत वेले का प्रॉब्लम होता है उस बुक को पढ़े। हमने अराउंड 2013 में वो पढ़ी थी किताब, उसके बाद एकदम क्लिक हुआ। हमें याद है, हमें एक भाई, के क्लास में, वरिष्ठ भाई है मधुबन के, उनके क्लास में सुना था बाबा का वाक्य, जो मुझे लगा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यानी अराउंड इस मुझे 2014 में सुना था ये, कि बाबा ने कहा हमारे जीवन में बहुत विघ्न थे, शरीर का प्रॉब्लम था, व्यक्तियों से पेपर्स आ रहे थे, धन का प्रॉब्लम था, बहुत सारे विघ्न थे। तो हम सोचते थे ये अभ्यास करें, वो अभ्यास करें, ये सम्मान करें, ये करें, बट एक वाक्य मुझे ऐसा मिला जो पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गया। वो वाक्य था, बाबा का वाक्य है ये, बच्चे तुम सिर्फ अपना अमृत वेला ठीक करो, बच्चे तुम सिर्फ अपना अमृत वेला ठीक करो, मैं तुम्हारा सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो ये जब हमें वाक्य सुना, अरे ये कितना अच्छा है, बाबा ने सिर्फ 4 to 45 मैनेज करने के दिया है, बाबा इतना अमृत वेला ठीक करो, बाकी जो भी दिन भर का मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। फिर मैंने सोचा यस, अभी हम पहले अमृत वेला ठीक करेंगे। ज्ञान में हम जब नए थे, 1-2 साल हम अमृत वेला लेट उठते थे, कोई 5 बजे उठते थे, कभी 4 बजे उठते तो नींद आ जाती, तब हम इतना अवेयर नहीं थे। तो जब हमें ये वाक्य मिला, बाबा का ये ज्ञान का ये वाक्य मिला, तो हमने पहले साना इस सब 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 छोड़ छाड़ के पहले ये अमृत वेला स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो हम लग गए अमृत वेला स्ट्रॉन्ग करने में, तो 4 to 45 है। उसके बाद धीरे धीरे जब स्टार्टिंग अमृत वेला होता है, समझो कोई ज्ञान में 1-2 साल हुए होता है, तो ऑब्वियसली थकान होती है। अमृत वेला हम भी जब नए थे तो मुझे लगता है 4 बजे हम बैठ पाते थे, 10 मिनट अच्छा ही होता, फिर 4:10, 4:15 होते थे, फिर ऐसी नींद लग जाती थी सीधा 5 बजे। अरे ये क्या हो गया, सीधा 5 बजे उठ गए, सीधा नींद लग गई। तो ये तो चलो मेजोरिटी होता है सबके साथ, लेकिन हमें जब अमृत वेला का महत्व पता चलता है, देखो बाबा ने मुरियो में कहा है अमृत वेला यह वरदानी वेला है, भगवान भोले रूप में है, दाता रूप में है, आप जो चाहे ले सकते हो, रिझाना चाहो रिझा सकते हो, जो वरदान प्राप्त करना चाहो प्राप्त कर सकते हो, जो सिद्धियां प्राप्त करना चाहो प्राप्त कर सकते हो, अपने पाप बख्शा सकते हो। तो यह अमृत वेला बाबा दाता रूप में है, भोले रूप में है। तो जैसे मैंने अनुभव किया, जैसे जैसे अमृत वेला ठीक होता गया, मैंने फील किया बाकी सब कुछ, हेल्थ बोलो, वेल्थ बोलो, रिलेशनशिप्स बोलो, एक खुशी का अनुभव दिन भर रहता है। हमने बाबा मुरलियों में कई बोलते हैं, सुबह अमृत वेला रेलवे जैसे ट्रैक पे बैठा दो, दिन भर ऑटोमेटिक पटरी पे चलेगी। तो एक अमृत वेला ऐसा है कि जैसे जैसे ठीक होता जाएगा, बाकी सभी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक ठीक होती जाएंगे। जैसे हमने क्लास में सुना था परिश भाई में, जैसे 4 to 45 एक पानी भरने का समय है। जैसे हमारे घर में समझो सुबह 4 से 4:45 ही पानी आता है, अगर हम उस समय पानी नहीं भरेंगे तो दिन भर हमें नेबर्स में जाना पड़ेगा, अरे भाई हमें एक बाल्टी भर के पानी दे दो, यानी खुशी के लिए जाना पड़ेगा, पीस के लिए जाना, आजू बाजू में व्यक्तियों के पास हेल्प के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन हम उठ गए, पानी भर लिया, तो हम दिन भर भरपूर रहेंगे, कोई किसी को मांगने की जरूरत ही नहीं है। तो अमृत वेला इज अ बेस, अमृत वेला स्ट्रांग करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं। दादी प्रकाशमणि जी का एक वाक्य है, जो बच्चे अमृत वेला नहीं करते मैं तो उन्हें ब्राह्मण नहीं मानती। तो मुझे इतना दिल में छू गया, उतना हर्ट हो गया था मुझे अराउंड 2014 में। तो मैं बोला अभी कुछ भी हो शरीर का प्रॉब्लम, कोई बहाना नहीं देना है, अमृत वेला स्ट्रांग करना है। उसके लिए पहले रात को जल्दी सोना है, समझो रात को जल्दी नहीं सो सकते, दोपहर में रेस्ट कर सकते हैं 1 घंटा 2 घंटा, रात जल्दी सो जाएंगे, अमृत वेला उठेंगे 3:30, कोई 3 बजे उठता है, कोई 3:30, कोई 4:15 बजे, बट जो ऑफिशियल टाइम है 4 to 4:45, 4 to 4:45, 4 to 5, 1 घंटा हमें अच्छा पावरफुल योग करना है, जिससे हम भरपूर हो। एक मुरली बाबा बोला, 1 सेकंड भी अनुभव करें अमृत वेला तो पूरा दिन भरपूर रहेंगे, बस 1 सेकंड क्लिक हो जाए परफेक्ट तो बाबा भरपूर कर देंगे। तो ये नियम है। और क्या होता है, कई आत्माओं एक क्वेश्चन में रहती है कि अमृत वेले के बाद सोना है कि नहीं, तो इसकी वजह से मैंने कई जगह अमृत वेला ही नहीं करते, सीधा 5 बजे 6 बजे उठेंगे। अरे अमृत वेले के बाद, कोई भाई बहन बोलते हैं अमृत वेले बाद सोना नहीं है, अमृत वेले के बाद सोना जैसे एक महापाप है। तो बीच में अभी एक स्पार्क की मीटिंग हुई, ये प्रश्न रखा कि अमृत वेले के बाद सोना है कि नहीं। तो उसमें सब अपनी अपनी दिनचर्या के अनुसार है, जिनको समझो दिन में रेस्ट मिलती है इफ ही कैन मैनेज, उसका रात को प्रॉपर रेस्ट होता है वो ना सोए भले, बट दिन में कार्य व्यवहार रहता है, रात को भी कभी कभार लेट होता है, 11-12 बज जाते हैं किसी को सोने में, तो वो आधा 1 घंटा रेस्ट कर सकते हैं। बट ऐसे भी नहीं कि भाई 5 बजे सो गए तो सीधा 8 बजे उठ गए, ऐसे नहीं, आधा 1 घंटा रेस्ट करके फ्रेश होके वापस मुरली पे, हम जो मुरली क्लास है जैसे सुनते हो लाइव मधुबन और क्लास में जाते हो जैसे भी, सबका 7 बजे मुरली प्रॉपर हमें बैठ के योगयुक्त होके सुनना है, ये दिनचर्या संभालते हुए। बट हमें ये लक्ष्य रखना है, कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी भले हमें कुछ बात छोड़नी पड़े, अमृत वेला स्ट्रांग करना ही है। अमृत वेला ठीक करने से सब कुछ ठीक होता है। एंड सेकंड आपका प्रश्न था, पहले मेरा योग बहुत अच्छा लगता था,
हाँ जी, अभी लगने में दिक्कत होती है।
यस, ये अच्छा प्रश्न है, ये बहुत आते हैं प्रश्न, योग न लगना तो यानी बहुत ही कॉमन प्रश्न है। अभी देखते हैं तो हम कभी कभी लगते हैं इतने, एक बहन तो 3 साल से एक ही प्रश्न पूछ रही है, भाई जी योग नहीं लग रहा, भाई जी योग नहीं लग रहा। बट फर्स्ट इज, योग का बेस इज ज्ञान का बल। अगर ज्ञान का बल है, ड्रामा फुल स्टॉप लगा सकते हैं, तो ऑटोमेटिक योग का बल बढ़ेगा। समझो हमें 1 घंटा योग करना है तो पहले हमें 2 घंटा ज्ञान सुनना और चिंतन करना है। योग बल, ज्ञान बल से ही योग बल बढ़ेगा। हम समझो ज्ञान चिंतन नहीं करते, डायरेक्ट बैठ जाएं योग में, फिर थॉट्स चलेंगे, वेस्ट थॉट्स कि भाई ये हुआ वो हुआ ये चल रहा है। फुल स्टॉप लगाने की ताकत आनी चाहिए, एंड फुल स्टॉप लगाने की ताकत तब आएगी जब हमारे हमारे माइंड में, हमारे बुद्धि में ज्ञान का बल रहेगा। वो इससे एंड मेजॉरिटी हमने देखा, पहले योग लगता था, 1-2 साल 3 साल के बाद नहीं लग रहा है। क्या होता है, चलते चलते पहले हम कोई व्यक्ति को देख के आते हैं, शायद हमारी बहन ने बहुत अच्छी पालना दी हो, हम तभी ज्ञान में आए, कोई व्यक्ति ने हमें ज्ञान में लाया, जैसे हमारे लिए फरिश्ता बन के आया, बहुत खुशी से हम 1-2 साल चल रहे थे, बट अभी वो कहीं और बिजी है सेवाओं में, या कहीं ना कहीं अच्छी पालना लेते लेते हमारे ही मन में कोई सूक्ष्म इच्छा पैदा हुई हो, जो हमने उनसे एक्सपेक्टेशन रखा होगा, वो चाहे मान की अपेक्षा हो, हमें पूछते नहीं कैसे हो क्या हो, या हमें कोई सेवा में चांस हो, वो कहीं ना कहीं न मिलने से आत्मा हर्ट हो जाती है। उसको लगता है अरे ये इतने पुराने ही ऐसे हैं, तो इट्स ऑल, हम ऐसे कहेंगे ये परचिंतन में जाना है, ये इतने पुराने ऐसे करते हैं, देखो ये भाई बहन ऐसे करते हैं, हम अच्छे फिर भी हम ठीक है ऐसे चलाते हैं। तो ज्ञान में आए, प्यार से आए, बट ज्ञान योग नहीं किया, डायरेक्ट सेवा में उतरे। देखो हमारा 3 स्टेप बाबा ने बताया, त्याग तपस्या, सेवा. सेवा इज थर्ड चैप्टर, बट मेजोरिटी डायरेक्ट सेवा में जंप कर देते हैं. तो आप तो सेवा सेवा बाबा भी मुरली बजा दें, पढ़ना और पढ़ाना है, जो पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वो उसको दें सेवा सेवा. बट त्याग, तपस्या, सेवा, इन थ्री स्टेप से जाना है. त्याग, तपस्या, सेवा. सो ज्ञान, इसमें ज्ञान का बल बढ़ाने के लिए, ड्रामा को फुल स्टॉप लगाने के लिए, जो रेगुलर मुरली आती है वो एक मुरली, एंड डेली एक अव्यक्त मुरली. हमारा अनुभव है, हम पहले 2-3 साल अव्यक्त मुरली नहीं पढ़ते थे रात सोने से पहले. तब हमने एक शिवानी बहन का अनुभव सुना. शिवानी बहन ने बोला हम बहुत यानी बहुत काल से रात को सोने से पहले एक अव्यक्त पाणी पढ़ते हैं. तो मैंने वो स्टार्ट किया, एंड मैंने देखा योग नहीं लग रहा रात को सोने से पहले या कभी भी. अव्यक्त वाणी पढ़ते पढ़ते ही ऐसी स्थिति हो जाती है, हम बाबा से कनेक्ट, योग ऑटोमेटिक चिंतन में चला जाता है, योग लग जाता है. तो मान की अपेक्षा छोड़, कोई भी हद की इच्छा छोड़, योग ज्ञान बल बढ़ाकर योग बल बढ़ाना है. एंड मोस्ट इज एक बल एक भरोसा, कोई हद का आधार न बनाकर, किसी का पर चिंतन पर दर्शन न कर, हमें सिर्फ एक बल एक भरोसा से जाएंगे. तो ऑटोमेटिक विद इन सेकेंड्स योग लगता है. एक बल एक भरोसा, कोई हद का आधार नहीं, कोई हद की इच्छा नहीं. यानी क्या होता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए व्यक्तियों में संकल्प रखेंगे तो ऑटोमेटिक सब सहयोग मिलेगा, एंड ऑटोमेटिक धीरे धीरे ज्ञान बल बढ़ने से योग बल बढ़ेगा. शांति.
ओम शांति. आपने बहुत अच्छे से इस आंसर का उत्तर दिया. एक और सवाल है, उसमें कहते हैं कि कर्म करते हुए बाबा को भूल जाते हैं. अशरीर स्थिति का अभ्यास तो करती हूँ, लेकिन कर्म करते करते भूल जाती हूँ और मन में दूसरे विचार आ जाते हैं.
कर्म करते हमने पहले महावाक्य बताया बाबा का. बाबा ने कहा मेरे बहादुर बच्चे वो हैं जो कर्म में योग करते हैं. कर्म में उनका योग का चार्ट अच्छा है. जैसे कोई भी कर्म हम करते हैं, कर्म करते 3 प्रैक्टिस हमने देखी, 3 संकल्प बहुत काम करते हैं. और हमने कई आत्माओं को ये अनुभव कराए, कई आत्माओं के हमने अनुभव सुने कि ये 3 संकल्प कर्म में बहुत काम करते हैं. फर्स्ट इज देखो, हमें पहले दृढ़ता रखनी है, डिटर्मिनेशन, कि हमें कर्मयोगी बनना ही है. जब तक हम कर्मयोगी नहीं बनेंगे, स्वमान की प्रैक्टिस कर्म में नहीं करेंगे, तब तक हम श्रेष्ठ योगी नहीं बन पाएंगे, हमारी स्थिति अच्छी नहीं बन पाएगी. हमने कई आत्माएं देखी ऐसे जो सुबह 2 बजे उठती हैं, 2 से 5 योग करते हैं, लेकिन कर्म में जाके दिल में चिड़चिड़ करते हैं, अरे क्रोध करते हैं. तो बैठ के योग इज नॉट इनफ, हमें वो योग को कर्म में लाना ही है. कर्म करते चलते फिरते योग, हम इसका पहले आपको बोलेंगे स्टार्ट करते वॉकिंग मेडिटेशन करें. डेली मॉर्निंग या इवनिंग 15 मिनट्स वॉक करें, एंजल वॉक करें या बिंदु स्वरूप में वॉक करें. एक बाबा का वाक्य है, देखो मुझे बहुत अच्छा लगा था, अराउंड 2014-15 के दौरान ही हमने सुना था. कर्म करते या चलते फिरते अपने को अशरीरी आत्मा समझो या फरिश्ता समझो तो सदा खुशी में उड़ते रहेंगे. कर्म करते या चलते फिरते अपने को अशरीरी आत्मा समझो या फरिश्ता समझो, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, तो सदा खुशी में उड़ते रहेंगे. तो हमें बहुत अच्छा वाक्य लगा, तो हमने उसी दौरान वॉकिंग अराउंड 2015-16 वॉक कर रहे थे, तो हमने स्टार्ट किया. तो जैसे मुरली में भी आता है, अगर याद में 4-5 घंटा भी वॉक करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा. तो हम चलो ट्राई करके देखते हैं. तो हमने बिंदु ट्राई किया, बिंदु रूप एंड फरिश्ता रूप, तो दोनों अभ्यास अच्छे होते हैं. देखो स्टार्ट में बिंदु रूप नहीं होगा, तो फरिश्ता देखें अपने आप को, फुल लाइट बॉडी है, मैं आत्मा मस्तक के बीच, एंड हमारी शरीर ये स्थूल जैसे, फुल बॉडी लाइट, पूरा स्थूल शरीर लाइट है. ये 2 अभ्यास, बट क्या होता है ये वॉकिंग में, तो चलो ठीक है हम व्यक्तियों से डिटैच हैं, परिस्थितियों से डिटैच है मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक, बट परिस्थितियों में कोई कोई ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, ऐसी मुश्किल आ जाती हैं, तो बाबा तो कहीं दूरी रह जाते हैं, संकल्प अच्छे अच्छे दूरी रह जाते हैं। तो हमने खुद भी अनुभव किए एंड औरों को भी कराए 3 संकल्प। बस एक संकल्प रखो कि भगवान मेरे साथ है, ये मुरली में वाक्य आता है, सिर्फ भगवान मेरे साथ है। एक मुरली में वाक्य, यदि सिर्फ आप यह सोचो कि भगवान मेरे साथ है तो उनकी शक्तियां आप में प्रवेश करती रहेंगी। तो मैं बोला चलो और कुछ नहीं, हम आत्मा नहीं देख सकते, फरिश्ता नहीं कर सकते कर्म, तो हम बस यही सोचेंगे भगवान मेरे साथ है। आप विजुलाइज करो कि फरिश्ता एक एज ए एंजल मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है। तो भगवान, बाबा का वाक्य है, आप सिर्फ यह सोचो कि भगवान मेरे साथ है तो उनकी शक्तियां आप में प्रवेश करती रहेंगी। एंड क्या होता है, चलो ये अभ्यास कर रहे हैं बट अचानक समझो कोई हम पे क्रोध करता है, कोई हम पे आरोप करता है, कोई ऐसा बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, ऐसी मुश्किल परिस्थिति आ जाती है, तब हम संकल्प करेंगे भगवान मेरे साथ ही, हम जबल हो जाते हैं। तो कभी कभी कोई कर्म स्टार्ट करने के पहले हम कंफ्यूज होते हैं कि अरे हम कैसे हो पाएगा, भगवान तो साथ है कि लेकिन मैं कर पाऊंगा कि नहीं पता नहीं क्या होगा। तो मुझे ये बहुत अच्छा संकल्प यूज हुआ कि भगवान मेरे साथ है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। आज की मुरली में भी है, क्योंकि भगवान साथ है तो अच्छा हो रहा है एंड अच्छा ही होगा। तो मुश्किल परिस्थिति में या कर्म करने से पहले यह सोचो भगवान मेरे साथ है, जो होगा अच्छा होगा। ये चलो कर्म करते मुश्किल परिस्थितियों में। अभी जब हम व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं, कोई हम पे क्रोध करता है, या संबंध संपर्क में घर में या ऑफिस में हमें कोई सहयोग नहीं देता, या कभी कभी क्या होता है हमारी कोई ग्लानी कर देता है, बैक बाइटिंग, या कोई घृणा रखता है, नेगेटिव संकल्प करता है, तो हमारे मन में एक एक्सपेक्टेशन होती है कि चलो भगवान साथ है लेकिन इसका क्या करें, ये तो हमारे नेगेटिव सोच रहा है। तो हमें एक ये संकल्प सकता है, ये एक संकल्प रखना है कर्म में, जो भी कनेक्शन में हमारे हैं, घर में हो या ऑफिस में हो, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। इसे ऑटोमेटिक इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएंगे। एंड बाबा बोले ये एक परछाई समान है सहयोग या व्यक्तियां, हम पलट जाएंगे वो पीछे पीछे आएंगे उनका सहयोग स्नेह ऑटोमेटिक। बस हमें मन में रखना है मुझे कुछ नहीं चाहिए। एंड ये 3 प्रैक्टिसेस, भगवान मेरे साथ है, सेकेंड संकल्प भगवान मेरे साथ है, जो होगा अच्छा होगा, थर्ड इज मुझे किसी से, व्यक्तियों से मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, ये 3 संकल्प हम रखेंगे कर्म में, इट्स वेरी गुड प्रैक्टिस। एंड मॉर्निंग या इवनिंग 15 मिनट हमें वॉकिंग मेडिटेशन जरूर करना है, जिससे हमारा बेस अच्छा बनेगा, एक स्थिति अच्छी बनेगी। यानी चलो शुरुआत में मेजोरिटी करते हैं वॉकिंग मेडिटेशन, कितने लोग करते हैं? मैं बहुत आत्मा को सुनता हूँ वॉकिंग में, तो बाबा को याद करते हैं एज अ बिंदु बन के देखो करते हैं, तो ये बहुत अच्छा अनुभव होता है। मैं अराउंड 1 ईयर से अनुभव कर रहा हूँ कि हमने एक अव्यक्त संदेश में सुना था कि बाबा कैसे दादियों को पूर्वजों को इमर्ज करते हैं, तो मैं अराउंड 1 ईयर से एक ऐसे अभ्यास करता हूँ कि मैं फरिश्ता वॉक कर रहा हूँ, मेरे साथ अव्यक्त बाप दादा, पीछे 108 आत्माएं, जैसे 108 दादियां पूर्वज आत्मा मेरे साथ वॉक कर रहे हैं, कैसे कैसे 108 आत्माएं, फिर फील करो 1008 आत्माएं वॉक कर रहे हैं, आप इतना पावरफुल फील करोगे, इतना जैसे कि पूरे विश्व की शक्ति आपके साथ है। बस 2 मिनट अभ्यास करोगे आप फील करेंगे बहुत पावरफुल, एंड दिन भर ये कर्म में आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, ओके,
ओम शांति भाई जी।
ओम शांति, थैंक यू
जी। भाई जी मेरे पास कुछ सवाल आए हैं, तो पहले तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द आंसर्स आर वेरी एप्लीकेबल एंड वेरी इजीली इट कैन बी इम्प्लाइड इन टुडेज लाइफ।
ये सब आंसर जो है मुरली बेस्ड है इसमें।
थैंक यू भाई जी. तो भाई जी मेरे पास जो प्रश्न आए आई आस्क यू, कोई बैंक कहती है मुझे पैसों की कमी है, कर्ज भी है, तो क्या राजयोग के माध्यम से इस समस्या से निकल सकती हूँ क्या मैं? और दूसरा एक सवाल और है कि इविल सोल से कैसे बच सकते हैं हम? मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आसपास कोई है और मुझ पर कभी कभी उसका असर भी हो जाता है.
ये पैसों की कमी का भी आजकल ये बहुत प्रश्न आते हैं. मैं छोटे भाइयों के बहुत आते हैं कि कर्ज हो गया है. ये भाइयों का होता है जो बिजनेस में कर्ज लेते हैं, अचानक लॉकडाउन में बिजनेस शांत हो गया, कर्ज हो गया. एंड बहनों का मैं कम आता है, भाइयों का ज्यादा होता है कि जॉब नहीं है, घर में पैसों के प्रॉब्लम है. लेकिन हमें एक बाबा का वाक्य नहीं भूलना है, जो ज्ञान धन से भरपूर है उन्हें स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः होती रहेगी. बहुत इजी वाक्य है, जो ज्ञान धन से भरपूर है वो उन्हें स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः होती रहेगी. एंड मुझे शुरू में और एक वाक्य मिला था, ये मुझे भी धन की प्रॉब्लम थी अराउंड 2014-15, तो एक वाक्य था जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं. अंडरलाइन, जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं वे सर्व प्राप्ति संपन्न बनते हैं. और क्या चाहिए, मैं बोला चलो याद में रहेंगे, मस्त रहेंगे, वे सर्व प्राप्ति संपन्न बनते हैं. तो चलो कोई नया आता है उनको इजी नहीं होता इतना, तो परिस्थितियों में न उलझकर हम कहेंगे 3 months 6 months पूरा ज्ञान योग में लग जाए, पूरा डेडिकेटली समझो कमी भी है ठीक है, प्रॉब्लम्स को बाबा को पूरी तरह समर्पण करें. समझो धन की प्रॉब्लम है, अमृत वेला बाबा बोलते हैं आप संकल्प करो बाबा मैं जो हूँ जैसी भी हूँ आपकी हूँ, तो बाबा आपकी सब कमी कमजोरी दूर कर देंगे. समझो हमें धन की प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, कुछ 3 months 6 months बस ज्ञान योग में लग जाए, मुरली चिंतन 4 hours तो मिनिमम चार्ट रखें योग का, आप अनुभव करेंगे ऑटोमेटिक जो बंद दरवाजे हैं या कर्ज है वो ऑटोमेटिक इजीली होता जाएगा. जैसे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको कहीं ना कहीं इजीली, आपको कम कार्य करती आपको ऑटोमेटिक धन की प्राप्ति होगी. जैसे कम मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा, बाबा ये वाक्य यूज करते हैं. तो बस हमने एक और एक देखा था, एक भाई सेंटर पे आता था हमारे, बहुत विघ्न है, लेकिन एक महीना बहन जी के पास आता था, बहुत विघ्न है, कभी ये समस्या कभी वे समस्या. हमारी बहन जी ने बोला राहुल भाई ऐसे ऐसे आ रहे हैं तो क्या करें. मैंने बोला भाई जी दिन दीदी आप ना उनसे पूछो, आपसे नेक्स्ट कल आएंगे ना उनसे सवाल पूछना कि आपकी प्योरिटी कैसी है. तो उन्होंने बोला नहीं दीदी मेरी प्योरिटी तो ऐसे है. तो ये विघ्नों का मेन कारण है कि प्योरिटी इन संकल्प. चलो क्या बोलते हैं हम ब्राह्मण स्थूल तो काम विकार को जीत लेते हैं, लेकिन कोई कोई में अभी भी दैहिक दृष्टि होती है, कुछ इम्प्योरिटीज हैं, कुछ भी होता है, तो उससे बहुत विघ्न आते हैं. जैसे कि वो इम्प्योरिटी, वो दैहिक दृष्टि एक ब्लॉकेज है हमारे सब कार्यों में, वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, हैप्पीनेस हो, रिलेशनशिप्स हो, जब तक वो क्लियर नहीं होगा प्योरिटी का पार्ट तब तक ये ब्लॉकेज हटेंगे ही नहीं. हम कितना भी काम करें इन पे, लेकिन वो चैप्टर जब तक क्लीन नहीं होगा तब तक आगे की बातें नहीं होंगी. एंड बस यही ज्ञान योग में लग जाए, ऑटोमेटिक स्थूल धन की जितना बाबा बोलते हैं ना. एंड मैंने अनुभव किया है जब ज्ञान योग में लगते हैं, बाबा से कनेक्ट होते हैं, तो ऐसे ऐसे कर्म में क्रिएटिव आइडियाज आते हैं जो हमने कभी सोचा ही नहीं था. अरे ऐसे हो सकता है, क्योंकि हम खुद अनुभव करते हैं कि जब हम खुद बैठते हैं, चलो ये सेवा का प्लान बनाते हैं, चलो बाबा बैठता हूँ, तो मुझसे नहीं हो पाता, अरे 10-15 मिनट बैठ गए कुछ नहीं होगा, तो हम याद में बैठ जाते हैं. तो ऑटोमेटिक ऐसे संकट टच होते हैं, बाबा आपको रास्ता दिखाएंगे कि भाई राहुल भाई कुछ भी आप ऐसे करो, ये करो, वो करो, ऑटोमेटिक क्लिक होगा. एंड विद इन इंश्योरेंस करते ही ऑटोमेटिक सब प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, वो धन की हो, हेल्थ की हो, कुछ भी हो, विद इन इजी 3 to 6 months आप इस पेपर में से निकल जाएंगे, यानी गारंटी के साथ हमने देखे अनुभव ये. एंड नेक्स्ट इज एविल सोल का प्रश्न है ना, एविल सोल से कैसे बचें? मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि आसपास कोई है और मुझ पर कभी कभी उसका असर भी होता है। एक मुरली थी, बाबा ने कहा था कि बिंदु रूप में रहेंगे तो इन एविल संस्कार और एविल संस्कारों से स्वतः बच जाएंगे। बस एक वाक्य में उत्तर है, आप बिंदु रूप बनेंगे तो इन एविल संस्कार और एविल सोल से स्वतः ही सेफ हो जाएंगे। बट क्या होता है, समझो कोई नया है एंड जिन पर ये प्रभाव होते हैं कभी कभी वीक होते हैं, तो वे कुछ ऐसे अभ्यास करें, इजी अभ्यास, जैसे फरिश्ता रूप में रहकर अपने चारों ओर बाबा का आह्वान करें, फरिश्ता रूप में बाप दादा का घर में उनका सिर पे हाथ रखें, उनसे वरदान ले, मास्टर सर्वशक्तिवान मैं सेफ हूं, एंड फील करें उनसे हाथों से किरणें हमारे पूरे सूक्ष्म शरीर में जा रही है, एंड धीरे धीरे वो एक सुरक्षा कवच बना रही है, एंड धीरे धीरे वो सुरक्षा कवच बनकर पूरे घर में फैल रही है, जैसे वो परमात्मा किरणें पूरे घर को सेफ कर रही है, परमात्मा शक्तियों की किरणें, मैं सेफ हूँ, इसके घर घर के सभी सदस्य सभी भाई बहन सेफ हैं। ये कम से कम 15 मिनट्स हम दिन में दो बार करना है, जिनको ये समस्या है परमात्मा ने, इससे क्या होगा, यानी जैसे ही अभ्यास करेंगे वह आत्मा की ऑटोमेटिक शक्तियां इमर्ज होंगी, एंड ऑटोमेटिक ये जो एविल संस्कार एविल सोल इनका प्रभाव ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक दूर चली जाएंगी आत्माएं। एंड जैसे जैसे 21 डेज 3 मंथ से प्रैक्टिस करेंगे, इसके साथ और एक एडिशन करेंगे, सुरक्षा कवच या मेडिटेशन हो गया, एंड इसके साथ ऐड करेंगे हम फॉरगिवनेस का मेडिटेशन। क्या होता है, कोई कोई आत्मा पूर्व जन्मों ने हमारे द्वारा दुख पाया हो, वो समझो उनके नेगेटिव वाइब या को एविल सोल बनके हमारे हिसाब किताब तुमने मुझे दुख दिया, कुछ भी हो सकता है एक्स वाई जेड, हम उनको इमर्ज करके उनसे क्षमा मांगे, हे भाई बहन हे आत्मा मुझसे जो भी गलती हुई हो इसी जन्म में या 5 जन्म, हम पूरी तरह सरेंडर हो, बाबा से किरणें लेकर उनको किरणें दे, पूरी तरह क्षमा मांगे उनसे, हमें माफ कर दो जो भी हुआ, फॉरगिव इट्स ऑल, हमें माफ कर दो, हमारे मन में भी आपके लिए कोई घृणा नफरत नहीं है, आप भी खुश रहो, आप भी मुक्त हो जाओ, क्योंकि वो भटक रही है, आप भी बाबा से परमात्मा प्राप्ति करो, आप भी मुक्त हो जाओ, ऐसे फॉरगिवनेस डेली करें 10-15 मिनट्स, एंड अनुभव करेंगे। हमने सुना बहुत सारी आत्माओं को विद इन 21 डेज, चलो कोई का ज्यादा सीवियर होगा तो 2-3 मंथ्स में 100% इसमें फायदा होता ही है, धीरे धीरे फायदा होता ही है, एक सुरक्षा कवच मेडिटेशन एंड फॉरगिवनेस, एंड इसका ये मास्टर सर्वशक्तिमान इस प्रमाण का ज्यादा अभ्यास करना, जिससे कि शक्तियां इमर्ज रहे, एविल संस्कार एविल सोल ऑटोमेटिक दूर रहेंगी। ओके
थैंक यू भाई जी, वैसे क्वेश्चंस तो बहुत है और ऑनलाइन भी आते जा रहे हैं, बट देन आई थिंक 5 मिनट हम और ले सकते हैं, एंड वी डोंट वांट टू मिस ऑन योर योग, क्योंकि सब योग की तो एकदम बेसब्री से राह देख रहे हैं भाई जी। तो एक और क्वेश्चन मैं लूंगी, अंतिम समय में पास होने के लिए क्या पुरुषार्थ करना होगा, फर्स्ट डिविजन में आने के लिए तीव्र पुरुषार्थी कैसे बने?
ओके, अंतिम समय में पास होने के लिए क्या पुरुषार्थ करना होगा, डिवीजन में आने के लिए क्या पुरुषार्थ कैसे हूँ? यस, इसका मेन वही जो पहले प्रश्न में उत्तर था, 8 घंटा योग का चार्ट, एंड मेन इसके साथ हमें इस अंतिम समय में ये अवेयर करना होगा कि अब ये अंतिम का भी अंतिम समय है, इट्स वेरी बहुत कम समय, अचानक कुछ भी हो सकता है, यानी चलो कोरोना काल में तो एक झटका था, यानी अभी तो ऐसे बहुत झटके लग सकते हैं, एंड हमें ये याद रखना है आज अंतिम समय, हमें इस एंड अंतिम समय में जब हलचल होगी ना व्यक्ति काम आएंगे, ना जो प्रॉपर्टी ना वस्तु ना वैभव काम आएंगे, हमें बस यह काम आएगा कि हमने जो श्रेष्ठ स्थिति बनाई है अपनी, अपना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके, और काम आएंगे हमारी पुण्य कर्म जो हमने सेवा से मिलाए, जो दुआएं मिलाई हैं, जो पुण्य कर्म हमने किए, ये दो चीजें ही काम आएंगी। हमें ये याद रखना है डेली, इसे इसे याद रखना है कि कुछ नहीं काम आएगा जो हम कर रहे हैं, तो बैंक बैलेंस हो या कुछ भी वैभव हो, या समझो कोई व्यक्ति से हमने कभी कभी क्या होता है, हम व्यक्तियों में बहुत उलझ जाते हैं। एक हमें वाक्य याद रखना है अंतिम समय फास्ट पुरुषार्थ करने के लिए कि हमें कहीं भी नहीं उलझना है, कितनी भी कोई प्राप्ति व्यक्ति लेके आए सामने, जब हम श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते हैं तो बहुत प्राप्तियां होती हैं। आपका नाम होगा, नाम होगा, आपको धन की अच्छी प्राप्ति होगी, आपको बहुत प्रसिद्धि मिले, आपको लगेगा बस मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ। अब इसमें न उलझकर, इन हद की प्राप्ति में न उलझकर हमें आपको श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगना है। क्योंकि अचानक देखो अभी तो ये इंटरनेट है, यह चल रहा है, तो जिस दिन ये इंटरनेट बंद हो जाएगा उस दिन जो हलचल होगी, चलो कोरोना काल में इंटरनेट था, सब लोग ज्ञान शोक से भरपूर होते, देखो ड्रामा प्लान अनुसार इन 15-20 सालों में सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। आप देखोगे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सब ऑनलाइन है, बैंकिंग ऑनलाइन, सब कुछ धीरे धीरे सब ऑनलाइन हो गया है, कुछ भी ऑफिस वर्क देखो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। जैसे ऑनलाइन बंद होगा, जो लास्ट में हलचल होगी, जिन्होंने अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया होगा वो कहीं ना कहीं जरूर फंसेंगे, उनकी उनकी स्थिति हलचल में जरूर आएगी। देखो अभी अवैध बाबा की मुरली थी, ये लास्ट टाइम से लास्ट टाइम बाबा ने क्या कहा था, बहुत काल अचानक और एवर रेडी, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, अचानक होगा, हमें अवेयर एवर रेडी रहना है। इस अंतिम समय में हम बहुत काल अभ्यास, लंबा समय समझो, लंबा समय ऐसे नहीं 10 साल 20 साल, हम 6 महीना 1 साल भी अच्छा पुरुषार्थ करें, मैं आपको गारंटी देता हूं आप 6 से 8 घंटा, 4 घंटा 6 months to 1 year तक करो, आप आगे फील करोगे कि यह चार्ट आपका नेचुरल हो जाएगा, आपको उसके बाद मेहनत नहीं करनी पड़ेगी चार्ट बनाने के लिए, ऑटोमेटिक वो छोटी छोटी कमजोरियां आएंगी आपको वो मिटा देना फास्ट फास्ट, बट जैसे आप योग को नेचुरल बनाते जाओगे वो आपका इजी नेचर बन जाएगा, फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, 6 months 1 year के बाद आपको जैसे वो बाबा का वरदान मिल जाएगा। देखो बाबा भी दुआएं उनको देता है जो बहुत बाबा को याद करते हैं। मुझे एक वाक्य मिला था 2014-15 में, जब मैं अपना चार्ट ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, तो मैं ट्राई कर रहा था ज्यादा से ज्यादा चार्ट हो, तब मुझे एक वाक्य मिला था, बाबा ने कहा था जो बच्चे मुझे बहुत याद करते हैं, अंडरलाइन ना, जो बच्चे मुझे बहुत याद करते हैं मैं उन्हें वतन में इमर्ज करके उनसे रूह रिहान करता हूं। देखो कितना वाक्य जबरदस्त वाक्य है ये, जो बच्चे मुझे बहुत याद करते हैं मैं उन्हें वतन में इमर्ज करके उनसे रूह रिहान करता हूँ। जैसे हम बाबा हमसे बात करें, हम जैसे उनसे जुड़ जाते हैं, जैसे मुरली में आता है, हम बाबा अव्यक्त होते भी हमें ऐसे अनुभव होगा कि वो हमारे साथ है, जैसे साकार में साथ है, मेरे साथ एक फरिश्ता रूपी शरीर बाबा हमारे साथ है, वो मुझे गाइड कर रहे हैं, मुझसे बातें कर रहे हैं। एवरी सिचुएशन में आपको ऐसे क्लिक होगा, ऐसे टच होगा कि अभी क्या करना है। जैसे बाबा ने कहा है जिसकी लाइन क्लियर होगी अंतिम समय उनको मैं सेफ स्थान में पहुंचा दूंगा, ये बाबा के वाक्य हैं, जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी मैं उन्हें ऑटोमेटिकली सेफ स्थान में पहुंचा दूंगा, उनको टच होगा कि अभी अभी यहां पहुंच जाओ, ऐसे होगा। तो लाइन क्लियर किसे कहेंगे, बाबा ने 3 बातें कही थी लाइन क्लियर की, 3 निशानियां। फर्स्ट निशानी बाबा ने कहा जो बच्चे ज्ञान चिंतन में रहेंगे, जो बच्चे ज्ञान चिंतन में रहेंगे उनकी बुद्धि क्लियर। सेकंड, बाबा की याद में रहेंगे, जो बच्चे बाबा की याद में रहेंगे उनकी लाइन, उनकी बुद्धि की लाइन बाबा से क्लियर मानी जाएगी। एंड थर्ड निशानी बाबा ने कही जो सेवा की प्लानिंग कर रहे हैं, फर्स्ट इज जो ज्ञान चिंतन कर रहे हैं, जो बाबा की याद में है, या जो थर्ड इज जो बाबा की सेवा की प्लानिंग कर रहे हैं, इन तीन बातों से क्लियर होता है कि वो बच्चे की बुद्धि बाबा से लाइन क्लियर है। ऑटोमेटिकली लास्ट में उनको टच होगा, बट इसके लिए बहुत काल, अंतिम समय के लिए यही पुरुषार्थ, फास्ट पुरुषार्थ, 8 घंटा चार्ट, कहीं भी 8 घंटा, चलो 8 घंटा इट्स लाइक समझो पहले किसी को बोलेंगे 8 घंटा, अरे ये हमसे नहीं होगा, बट एक वाक्य बाबा का है जो बहुत ही, देखो बाबा ने क्लियरली कहा बोले स्थूल सेवा ना करो, बाबा ने वाक्य कहा था मेरे सबसे ज्यादा मददगार बच्चे वह है जो 8 घंटा याद में रहते हैं, बस इजी कुछ ना करो, बाबा की याद में रहो, ऑटोमेटिक विश्व को सकाश मिलेगी, ऑटोमेटिक सेवा होगी। बाबा ने कहा था मेरे सबसे ज्यादा मददगार बच्चे वह हैं जो 8 घंटा याद में रहते हैं। तो चलो 8 घंटा नहीं, 4 आवर्स 6 आवर्स हम करें स्टार्ट में, धीरे धीरे बढ़ाएं। चार्ट फर्स्ट इज अंतिम समय चार्ट 4 to 8 आवर्स, सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं भी उलझना नहीं है, कहीं उलझेंगे प्राप्ति में, आकर्षण में, व्यक्ति में, वैभव में, योग नहीं लगेगा, इट्स गारंटी योग नहीं लगेगा, कहीं भी उलझ जाए तो प्राप्तियों में। देखो प्रशंसा इस ज्ञान मार्ग में सबकी होती है कहीं ना कहीं, एक मुरली का बाबा का वाक्य था अगर प्रशंसा को स्वीकार करेंगे तो रूहानी शक्ति में कमी होगी, ये बहुत ही गहरा वाक्य है, अगर प्रशंसा में आएंगे, नाम शान में आएंगे तो ऑटोमेटिक जो आत्मिक शक्ति, रूहानी शक्ति ऑटोमेटिक डाउन जाएगी, तो इसका मेन बेस कहीं भी उलझना नहीं है, फर्स्ट वॉज चार्ट 4 to 8 आवर्स, कहीं भी उलझना नहीं है, एंड थर्ड बेहद का वैराग्य, मुझे कहीं यहाँ कुछ नहीं चाहिए, सब एंड होने वाला है, जो मुरली में आता है सब खत्म होने वाला है, बस इस 3 पॉइंट को याद रखें, अंतिम फास्ट पुरुषार्थ, एंड बाबा ने जो मुरली चली अभी इस लास्ट से लास्ट सीजन की, बहुत काल, अचानक, फॉरएवर रेडी, ठीक है।